सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
अंजुम, वेलकम बैक टू सोच विचार। बताइए कि ये हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और मेरे ख्याल काफ़ी सारे हमने मैक्रो टॉपिक्स कवर किए हैं। कुछ थोड़ा बहुत हम गए हैं एजुकेशन में, थोड़ा बहुत हम गए हैं इनटू गवर्नेंस इश्यूज, पर एक जो बहुत इशू मेरे सामने कम से कम खड़ा है, आपका क्या ख्याल है कि ये पॉवर्टी के एरिया में हम कोई बात करें क्या? व्हाट डू यू थिंक, पॉवर्टी और इन किस्म की चीज़ों में कोई बात करें?
हाँ, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है नदीम। और पॉवर्टी के साथ जो जुड़े हुए मसाइल हैं, हंगर और न्यूट्रिशन, ये साउथ एशिया में बहुत इनका बार बार जिक्र होता है, क्योंकि कई लोगों को हैरत भी होती है कि ये मेल न्यूट्रिशन हिंदुस्तान में जो है कई जगह अफ्रीका के मुल्कों से भी ज़्यादा है, तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है।
तो इसके लिए अंजुम, आज हमने एक अपने पुराने दोस्त को बुलाया, हारिस गुज्जर साहब। हारिस गुज्जर साहब वैसे तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ही इज़ वेल नोन इन पाकिस्तान। माशाल्लाह इन्होंने बड़ा काम किया है। ये इन्होंने एक इदारा इस्टेब्लिश किया, उसका नाम है कलेक्टिव फॉर सोशल साइंस रिसर्च। ये काफ़ी मकबूल हो गया, कराची में है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इश्यूज पे इन्होंने काम किया। तो इनसे तो हमने एक नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करने और काफ़ी कुछ सीखना है। तो आज इनसे ये इन्होंने कोई नई रिसर्च शुरू की है पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन में, तो उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने, मैं सस्पेंस रखना चाहता हूँ, बात नहीं पूरी करना चाहता, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं जो इंटरेस्टिंग है। तो हारिस साहब ने बहुत काम किया सोशल पॉलिसी इश्यूज़ पे पाकिस्तान में। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री की, उसके बाद इन्होंने ससेक्स में पढ़ाया और बाहर के थिंक टैंक्स और रिसर्च इदारों में काम किया। उसके बाद ये पाकिस्तान आ गए मुल्क की खिदमत करने के लिए और इन्होंने यहाँ की पॉवर्टी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, लैंड के इश्यूज़ पे बहुत सारा काम किया कलेक्टिव फॉर सोशल साइंस रिसर्च में। इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी रिसर्च की और इंडिया में पब्लिश किया, और इसके साथ साथ इन्होंने इराक़ में सैंक्शंस पे और काफ़ी सारा इराक़ पे काम किया। तो इनका काफ़ी इंटरनेशनल काम भी है, पर इनकी मकबूलियत इन इश्यूज़ पे बहुत है जिन इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं हम। तो हारिस साहब वेलकम।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये बताइए कि आप काम करते रहे हैं ये फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, पॉवर्टी पे, तो क्या आपकी रिसर्च, पहले बताइए ये क्या आप क्या रिसर्च है और कहाँ से हम शुरू करें इन इश्यूज़ को आप डिफ़ाइन? फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी तो मुझे समझ नहीं आती इशू क्या है, कैसे इन इश्यूज़ को हम डिफ़ाइन करें?
यस, आजकल जो है वो न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है और पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। और एक ये आप काफ़ी आप सुनते आए होंगे कि पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन की शरह बहुत ज़्यादा है, साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा है, और उसको उसके जो है वो हल निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इन तमाम जो इस्तलाहात जो इस्तेमाल होती हैं तो इनके मायने क्या होते हैं, इनके पीछे क्या चीज़ होती है, क्योंकि सोशल साइंस में अल्फाज के मायने कुछ होते हैं और आम जबान में कुछ और होते हैं, और उन दोनों के दरमियान जो फासला होता है अक्सर हमारे जो है वो मसाइल, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, शायद उनकी जड़ वही फासला होता है कि आम जबान में जिस तरह से या आम सोच में हम सोचते हैं किसी मौजू के बारे में, और जो टेक्निकल लोग और पॉलिसी वाले लोग जिस तरह से सोचते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में सोचें तो न्यूट्रिशन को उसका जो आम लघवी जो मायने हैं या आम तौर पर जिस तरह से लोग समझते हैं उसको समझते हैं खुराक के हवाले से, कि न्यूट्रिशन का ताल्लुक जो है वो खाने पीने से है, और खाने पीने से यकीनन उसका ताल्लुक है। लेकिन सोशल साइंस की दुनिया में न्यूट्रिशन जो है वो उसको इस तरह से समझा जाता है कि सेहत यानी जिस्मानी सेहत, और जिस्मानी सेहत के पैमाने अलग अलग हैं, और उसका एक अहम पैमाना ये है कि छोटे जो बच्चे हैं 5 साल की उम्र तक के बच्चे, तो उनका कुछ मयार होता है उनकी नशोनुमा का, जिस्मानी नशोनुमा का। तो अगर उनकी जो है वो उम्र जो है वो चंद महीने है, जो भी जो भी उनकी उम्र है, उस हिसाब से उनका कद कितना है, और जो कद है उनका उस हिसाब से उनका वज़न कितना है। तो पहला जो है पैमाना यानी कि उम्र के हिसाब से कद, इसको स्टंटिंग कहते हैं अगर ये पूरा ना हो, और अगर कद के हिसाब से वज़न पूरा ना हो तो उसको कहते हैं वेस्टिंग। पाकिस्तान में जो है वो 44% बच्चे जो है वो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक वो स्टंटेड हैं, यानी कि वो उनका वज़न, उनका उनका जो कद है वो अपने उम्र के हिसाब से कम है, और तकरीबन 15% बच्चे ऐसे हैं जो कि वेस्टेड हैं, जिनका वज़न अपने कद के हवाले से कम है। तो ये तशवीशनाक जो है वो आदाद व शुमार है। अब मसला ये है, जब हम इस पर काम करने जाते हैं, और जैसे हमने एक सर्वे किया, हम एक काफ़ी एक हम हमने बड़ा सर्वे किया है सिंध के दही इलाकों में, जिसका पहला राउंड हम कर चुके हैं और इसका अगला राउंड होने वाला है नवंबर के महीने में, जिसमें हमने 1000 जो है वो नौमौलूद बच्चों को हमने रिक्रूट किया, उनकी माओं को। हम देखना ये चाह रहे हैं कि वो ख़वातीन और वो घराने जो बहुत ज़्यादा ज़रई काम करते हैं, उसका पहली बात यह कि ज़रई काम का बोझ किस पे पड़ता है, उसका ज़्यादातर बोझ जो है अब नज़र आ रहा है कि ख़वातीन पे पड़ता है, और वो जो बोझ पड़ता है तो उसके बाद उन औरतों की सेहत और उनके बच्चों की सेहत पे क्या असर पड़ता है। तो ये एक बुनियादी हमारा रिसर्च का सवाल था। इसको लेकिन समझने के लिए हमें, इस पे मज़ीद काम करने के लिए हमें इस चीज़ को जो है वो आम लोगों को भी समझाना पड़ता है। जब हम वहाँ समझाने के लिए जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सोशल साइंस की दुनिया और पॉलिसी की दुनिया जो है वो आम लोगों की दुनिया से कितनी दूर है। सोशल साइंस की दुनिया में जिस तरह से मैंने बताने की कोशिश की कि न्यूट्रिशन यानी स्टंटिंग और वेस्टिंग, स्टंटिंग यानी कि उम्र के हिसाब से कद में कमी, और वेस्टिंग यानी कि कद के हिसाब से वज़न में कमी, तो इन दोनों चीज़ों के जो मायार हैं उनको नापने के मखसूस तरीक़े हैं कि आप जो है वो उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके बाद आप कद नापते हैं, फिर आप जो है वो एक सोशल साइंस में या स्टेटिस्टिक्स की ज़बान में एक इस्तेलाह है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर कोई बच्चा एक हेल्दी या सेहतमंद आबादी में जो रिलेशनशिप है उम्र और कद में, कोई बच्चा अगर उससे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे है तो उसको कहा जाता है कि ये स्टंटेड है। तब ये खामखा की, मतलब खामखा तो नहीं है लेकिन ये एक टेक्निकल जो है वो तसव्वुर है। तो इसको जब हमने कोशिश की कि आम जबान में हम कैसे समझें, लोगों को कैसे समझाएं, सियासतदानों को कैसे समझाएं, ब्यूरोक्रेट्स को कैसे समझाएं कि इस पर कुछ काम हो, और न्यूट्रिशन को जो सिर्फ और सिर्फ खुराक के हवाले से देखा जाता है कि आप खाते पीते कैसा हैं, उससे हम अगर हट के देखें, और उससे हट के देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अक्सर आप सुनते हैं कि पाकिस्तान में भूख नहीं है, हालांकि भूख भी है, इस पर हम बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है, जो कि एक साइंटिफिक उसका उसकी जो है वो तसव्वुर क्या है, और आम लोग क्या समझते हैं। तो आखिर में मज़े की बात यह हुई कि हम एक तसव्वुर पे आए कि हम इस पे हम लोगों से पूछने लगे कि आप ये बताएं कि आपकी कम्युनिटी में, आपके देहात में या आपके मोहल्ले में वो बच्चे कौन से हैं जो कि कमज़ोर हैं, और कमज़ोर जो हैं वो पैमाना क्या है उन बच्चों के मुकाबले में जो कि हट्टे कट्टे हैं। तो लफ्ज़ हट्टे कट्टे बच्चे जो है वो हमको इस्तेमाल करना पड़ा। तो अब ये सोचें कि एक तरफ जो है वो हमारी आज की जो सोशल साइंस है और उसके साथ जो जुड़ी हुई जो सोशल पॉलिसी है, वो उसके तकाजात ये हैं कि आप जो है वो आपके आदाद व शुमार, आपके पैमाने, आपके सर्वे करने के तरीके, आपकी मेजरमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा उसमें सफाई हो और इतनी सोफिस्टिकेटेड हो कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन्स के ऊपर और नीचे कौन होता है वो आपको पता चले, और एक लेवल पे आम फहम में ये बात समझाना तकरीबन नामुमकिन है। आम फहम में आप सिर्फ यही समझा सकते हैं कुछ बच्चे सेहतमंद हैं और हट्टे कट्टे हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर हैं। इस चीज़ की अहमियत इसमें है कि अगर हमको लोगों को कायल करना है, पॉलिसी बनाने वालों को और आम लोगों को भी, कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ करें, तो सबसे पहले आपको उनको कायल करना पड़ेगा क्योंकि मसला है, और मसला समझाने के लिए हमारे पास सोशल साइंस में जो इस्तलाहात हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि वो नाकाफ़ी हैं, वो जो है वो लोगों की समझ और लोगों की ज़बान उससे बहुत दूर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आम लोगों की जो समझ और ज़ुबान है वो उसमें कोई कमी है, मेरा अपना ख्याल ये है कि एक पुल बनाने की ज़रूरत है जो एक टेक्निकल चीज़ों में और जो आम तरह से चीज़ें समझी जाती हैं।
अच्छा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं, जो मुझे बात समझ आई है वो ये कि हमारे पास सोशल साइंस की जो ज़बान है, जो हमने ऑब्वियसली बाहर से सीखी है, अंग्रेज़ी में सीखी है, और सोशल साइंस जो है इजादी वेस्टर्न ममालिक की है, वो ज़बान ऑब्वियसली उर्दू में या हमारी जो और लैंग्वेजेस हैं उनमें तो ट्रांसलेट होती नहीं, और अगर हम करें तो बहुत एफर्ट की ज़रूरत है जो हमने अभी तक लगाया नहीं है, तो उससे ऑब्वियसली एक हमारा गैप रह जाता है, ना सिर्फ इस एरिया में बाकी एरियाज में भी। पर इस गैप को फिल करने का तरीका क्या होगा, मतलब इन सेंस कि हमें एक मैथ्स ट्रांसलेशन करनी है या हमें क्या लोग मैथ्स एजुकेशन करनी है, और एक और चीज़ कि ये इससे फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि जो हमारे वो हैं क्या कहते हैं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो हमारे पॉलिसी सर्कल्स हैं उसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज वो तो पढ़े लिखे अंग्रेज़ी में लोग हैं। आम लोगों में यस मैं समझता हूँ कि मुश्किल है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
मेरा ख्याल है कि हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ज़बानों और मुख्तलिफ महावरों में हम जीते हैं, दुनिया में हर जगह ऐसी तरह जीते हैं। हमारा एक बिलखसूस एक जिस तरह से जहाँ आपने इशारा किया कि एक हमारा तजुर्बा है कि जो हिंदुस्तान था फिर वो पाकिस्तान बना, एक तरफ बांग्लादेश बन गया, तो ये ममालिक जो हैं इन पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की और वो अंग्रेज़ी में काम करने लगे, सोचने लगे। लेकिन मेरे ख्याल में उसका असर ये हुआ कि जो लोगों की जो तरजीहात हैं और लोगों के जो मसाइल हैं और जिस मुहावरे में, सिर्फ ज़बान की बात नहीं, जिस मुहावरे में जो पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, जिस मुहावरे में तालीम होती है, जिस मुहावरे में लोगों के मसाइल पे बात होती है, उन दोनों में फ़र्क आ चुका है। तो ये जो फ़र्क है इसके बहुत मेरे ख्याल में गहरे असरात होते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सियासतदान हमारे जो हैं पढ़े लिखे हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तालीम याफ्ता हैं, तो उनको यकीनन इन इस्तेलाहात के मायने मालूम हैं, लेकिन उनको भी वो भी चूँकि हर शख्स जो है वो एक से ज़्यादा मुहावरों में और ज़बानों में जीता है, तो मेरा ख़्याल है कि असलियत क्या है, क्या हकीकत है, किस हकीकत में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, किस हकीकत में सोच की तख्लीक होती है, किस हकीकत में चीज़ें ऑन द ग्राउंड होती हैं, तो इन चीज़ों को अलग रखा जाता है। तो मेरा ख्याल में बहुत सारे हमारे मसाइल उससे हैं। उसकी मैं मिसाल इस चीज़ से दूंगा कि जब सियासत हमारा जो एक बुनियादी जो एक मॉडल है चीज़ों के बारे में सोचने का, वो ये कि जैसा भी है, टूटा फूटा हो या अच्छा हो, हमारा ये ख्याल है कि एक जमहूरी अमल उसकी बड़ी ज़रूरत होती है। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स और इवन डोनर्स वो कब काम करते हैं, हमारा ख्याल ये है कि उस वक्त उन्हें करना चाहिए जब उन पर दबाव पड़े लोगों का। तो लोग जिस तरह से सोचते हैं, चीज़ों को जिस तरह से समझते हैं और जिस ज़बान में समझते हैं, जिस मुहावरे में समझते हैं, उसमें उसका किसी हद तक आपको नज़र आता है उसका असर सियासी मुहावरे पर और सियासी प्रोसेस के ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है पॉलिसी मेकिंग में नहीं नज़र आता। तो ये जो फासले हैं ज़बान के और मुहावरे के, तो मेरा ख्याल है इनका बड़ा गहरा असर होता है हमारे माशरे की में गुंजाइश पैदा करने में, कि हमारे माशरे में किस हद तक गुंजाइश है कि आम लोगों की, गरीब लोगों की जो तरजीहात हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, उन पर बात हो सकती है कि नहीं हो सकती, उन पर काम हो सकता है कि नहीं। असल चीज़ तो यही है कि नीचे से कितना दबाव पड़ेगा, और अगर दबाव डालने के लिए, यानी जो चीज़ इंसान महसूस कर रहा है, जो शख्स एक महसूस कर रहा है, उस एहसास को एक सियासी अमल में ढालने के लिए जो अल्फाज हैं, अगर उनको जो चाहिए अगर वो मैसर नहीं है, तो वो सियासी अमल रुक जाता है। उसकी अगर मैं आपको एक और मिसाल दूँ, फूड सिक्योरिटी पे हम काफ़ी काम करते हैं और फिर फूड सिक्योरिटी पे काफ़ी काम भी होता है। फूड सिक्योरिटी की जो सोशल साइंस उसकी जो उसकी तारीफ है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसमें है कि हर शख्स को उतनी खुराक और गजाइत भरपूर खुराक मुहैया हो जिससे कि उसकी सेहत बरकरार रहे और उसका वक़ार भी बरकरार रहे, यानी कि वह पुरवक़ार तरीके से एक सेहतमंद खुराक हासिल कर सके। ठीक है, अब इसके अंदर इसका तर्जुमा तो मैंने कर दिया आपको, अंग्रेज़ी में जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक तारीफ दी, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत नेगोशिएट हुआ मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कि भाई फूड सिक्योरिटी क्या है, तो वो एक नेगोशिएटेड एक स्टेटमेंट है, उसको तर्जमा भी मैंने आपको करके दे दिया। लेकिन उस तर्जुमे का ताल्लुक क्या है लोगों के आम तजुर्बे से, अब वो हम नहीं कह सकते। हम जब आम लोगों में जाते हैं और हम बात करते हैं कि भाई वो आप ये बताइए कि आपके ख्याल में भूख क्या है, यानी भूख, अब भूख जो है वो पाकिस्तान में जो अमीर तरीन शख्स है उसने भी तो कभी कभी महसूस की होगी, कभी वो बीमार पड़ गया, कभी उसने रोज़े रख लिए, या कभी किसी और वजह से इत्तेफाकन उस वक्त उसको खुराक मैसर नहीं तो वो भूखा रहा। तो भूख का जो तजुर्बा है, जो एक फिज़िकल तजुर्बा है, जिस्मानी तजुर्बा है, आपको तकलीफ़ होती है उससे, तो वो तो तकरीबन सबने जो है वो उस तजुर्बे से गुजर चुके हैं। तो एक आम आदमी से बात जब आप पूछते हैं कि आप भूखे कब रहते हैं, तो ये बड़ी एक अहम बात है कि नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वेज ये बता रहे हैं कि तकरीबन 30% लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमारे घर आने में कभी ना कभी भूख आती है, भूख होती है। अब भूख की क्या तारीफ देते हैं वो, एक तारीफ जो आम तौर पे दी जाती है वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे सोए। तो ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है लोगों के लिए कि ये एक बहुत ज़्यादा शिद्दत है कि हमारे बच्चे जो हैं एक दिन उनको इतना खाना नहीं मिला कि वो पेट भर के सो सके। तो तकरीबन 10% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, 20% और लोग ये कह रहे हैं कि भूख हमने हमने महसूस की, हमारे बच्चों ने नहीं, हमने बच्चों को बचा लिया भूख से, लेकिन हम जो हैं बड़े जो हैं घर के हम भूखे रहे। तो इसका मतलब है कि भूख एक ऐसा तजुर्बा है जो कि 30% लोगों ने उससे गुजरे हैं, और अगर 30% लोग उससे गुजरे हैं तो उसका ख़तरा जो है वो और भी बहुत ज़्यादा लोगों को लाहक है। तो तकरीबन आधी आबादी ऐसी है जो कि कभी ना कभी जो है वो भूख से गुजर सकती है, या उस परेशानी में रहते हैं कि किसी ना किसी दिन वो भूखे रहेंगे या उनके बच्चे भूखे रहेंगे। तो अगर भूख इतना बड़ा इशू है तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन में, मुकामी इलेक्शन हो, सूबाई हो या कौमी हो, उसमें भूख का मसला क्यों नहीं उठ कर आया? लोड शेडिंग का आता है, लोड शेडिंग जो है वो आसानी से लोग समझ जाते हैं। सियासतदान, पॉलिसी मेकर, डोनर, टेक्नोक्रैट और एक आम आदमी की जो समझ है लोड शेडिंग की वो मुश्तरका है कि बिजली आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, इतने घंटे नहीं आई। तो एक बहुत एक तरह से एक जो एक सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, यानी बिजली का पैदा करना और वो लोगों तक पहुंचना, तो वो एक आसान अंदाज से उसमें जो सोच है एक गरीब आदमी की, एक पढ़े लिखे शख्स की, एक सियासतदान की, एक ब्यूरोक्रेट की, एक टेक्नोक्रेट की, इन तमाम एक बिजनेसमैन की, इन तमाम लोगों की जो सोच है वो उसके बारे में मुश्तरका है। लेकिन एक जो एक बुनियादी ज़रूरत है उसमें जो टेक्नोक्रेट है या सोशल साइंटिस्ट है, जब हम उनसे इंगेज करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई आप भूख की बात करें, आप फूड सिक्योरिटी की ना करें, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये तो फिर सब्जेक्टिव हो जाएगा ना, एक शख्स ने भूख महसूस की, एक और ने नहीं की, हम तो आपको कैलोरीज के हिसाब से बताते हैं कि 2350 कैलोरीज किसने खाई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि ये जो फासले हैं, कुछ बुनियादी जो लोगों की ज़रूरियात हैं उनके हवाले से, ज़बान के जो फासले हैं, मुहावरे के फासले हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये दरअसल सियासी फासलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, या हो सकता है कि सियासी फासले हैं जिनकी वजह से इस तरह की ज़बान, ये ज़बानी जो फासले हैं, मुहावरती फासले हैं, ये चले जा रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हम जब सोशल साइंस करते हैं तो हमें मुसलसल इस में जद्दोजहद करनी चाहिए कि आम फहम में, आम ज़बान में, आम मुहावरे में, जिस मौजू पे हम कर रहे हैं उसके बारे में किस तरह से बात की जा रही है, और किस तरह से हमारा काम जो है।
जी, ये तो आपने अंजुम के दिल की बात कह दी, ये भी यही कहते हैं कि उर्दू में सब काम होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई का, ताकि हमारे सब लोग समझ सकें। क्यों अंजुम?
नहीं, मैं तो इसका बिल्कुल कायल हूँ। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि जब तक के मुश्तरका ज़बान ना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उर्दू हो, मगर मुश्तरका ज़बान हो तो जब वो नहीं होगी तो जैसे हारिस कह रहे हैं, जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी का और डेवलपमेंट का भी, वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होगा, जिससे नीचे से लोगों की एहसासात, उनकी डिमांड्स ऊपर जाते हैं और ऊपर वो समझे जाते हैं और उन पर फिर कुछ अमल होता है, बल्कि वो टॉप डाउन होगा। कि बाहर से हम अपनी सोशल साइंस की ज़बान में जो चीज़ हमें समझ आती है वो हम लोगों पर एक तरह से इम्पोज करना चाहते हैं, और वो बहुत ही इनफेक्टिव प्रोसेस है। तो मैं तो इसका कायल हूँ। सिर्फ मेरे जहन में एक सवाल जो आ रहा था जब हारिस ने बात की कि भूत जो है वो एक पॉलिटिकल डिमांड में ट्रांसलेट नहीं होता, क्योंकि उसको एक तरह से समझना मुश्किल है, और उसके मुकाबले में लोड शेडिंग हो जाता है क्योंकि वो आसान है। तो मेरे जहन में ये आया कि हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई मसाइल हों, क्योंकि साफ पानी को अगर ले लें हम तो वो तो हर शख्स की समझ में आता है, और मगर वो भी हम कोई सियासी जमात जो है वो साफ पानी का डिमांड लेकर आगे नहीं बढ़ती। तो एक तो ये चीज़ मैं समझना चाहूँगा, और दूसरी वापस न्यूट्रिशन की तरफ जाते हुए हारिस ने बिल्कुल सही एक डिफाइन किया कि अगर हम उसकी आउटकम्स को देखें तो उसको हम स्टंटिंग और वेस्टिंग से ही मेजर करेंगे, मगर स्टंटिंग और वेस्टिंग जो हैं वो आउटकम्स काफ़ी हद तक खुराक और सही खुराक के साथ उनका ताल्लुक है। तो उसको अगर हम, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या उनके तजुर्बे में लोग ये समझते हैं कि ये बच्चे कमज़ोर हैं इस वजह से कि इनको सही खुराक या गज़ाइत मैसर नहीं आई।
जी, जैसे कि मुझे मालूम है कि आप जो है वो, आपको शायरी का बहुत शौक़ है, तो बिल्कुल लोगों को मालूम है कि उसका ताल्लुक़ ख़ुराक से है, और लोग ये बताते भी हैं कि कौन से खाने ऐसे हैं जिनमें गज़ाइत है और कौन से ऐसे खाने हैं जिनमें नहीं है। ये बहुत एक दिलचस्प गुफ्तगू होती है लोगों के साथ। लेकिन जिस तरह से कि फैज़ साहब ने बताया कि ये भी हैं और ऐसे कई और भी मौजू होंगे, तो मसला ये है कि सोशल साइंस की दुनिया में जो है जब हम बात करते हैं तो हम इसको मॉडल कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये एक मुख्तलिफ चीज़ों का असर होता है न्यूट्रिशन के ऊपर, उसमें खुराक और अच्छी खुराक एक चीज़ है, साफ पानी का मुहैया होना वो एक चीज़ है, बच्चे की पैदाइश से पहले माँ की सेहत वो एक चीज़ है, बच्चे की पैदाइश के बाद माँ और बच्चे दोनों की जो है वो सेहत, उनकी सेहत में हिफाजती इकदाम वो एक चीज़ है। WHO कहता है कि पहले 6 महीने विलादत के बाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चा माँ का दूध पिए वो एक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि सोशल साइंस में हम कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के असरात होते हैं। उसके अलावा हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं मालूम होती, यानी जब हम इन चीज़ों को स्टेटिस्टिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में जब हम इनको नापने की कोशिश करते हैं, पता ही चलता है कि हमारे तमाम जो मॉडल्स हैं, हमारे तमाम जो हाइपोथेसिस हैं वो नाकाफ़ी हैं। यानी कि बहुत सारा जो इसमें तफरीक है, इसमें एक बच्चे के जो है वो कमज़ोर होने में या हट्टे कट्टे होने में, वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम उसको पूरी तरह हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यानी सोशल साइंस की ज़बान में मैं ये कहूँगा कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रिश्ता है खुराक, साफ पानी, सेहत के इंतज़ाम और जो बिहेवियर यानी ब्रेस्ट फीडिंग या दूसरी जो बिहेवियर है, हाइजीन प्रैक्टिसेस, इन तमाम चीज़ों का जो ताल्लुक है उस नतीजे के साथ, यानी कि बच्चे की सेहत, उसके अंदर सोशल साइंस में हम कहेंगे नॉइज़ या आवाज़ बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम उनके दरमियान बराह रास्त ताल्लुक इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। अच्छा, आम लोगों के की सोच में भी ये चीज़ है। हम जब जाते हैं कम्युनिटी में, हम कहते हैं लोगों से कि आपके यहाँ जो है वो क्या वजूहात हैं कि कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई बच्चा सेहतमंद है, तो यकीनन लोग कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम लोग काम करते हैं, हम बस खाने को अच्छा खाना नहीं होता, हम रोटी खाते हैं सादी और दूध नहीं होता, और हमारे पास साफ पानी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन चूँकि ये जो रिश्ता है इन तमाम चीज़ों का, जिसको सारी दुनिया में जो लोग मानते हैं कि इन तमाम चीज़ों की अहमियत है न्यूट्रिशन में, यानी बच्चों के सेहतमंद होने में, तो अगर वो रिश्ता जो है वो इतना जो है वो टाइट नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो लोग भी यही देख रहे होते हैं। लोग आपको अक्सर जो है मिसालें देते हैं, वो कहते हैं कि देखो फलां जो शख्स है वो तो ज़मींदार है, उसका बच्चा भी जो है वो कमज़ोर है, या उसका बच्चा उसकी वफ़ात हो गई, और कोई गरीब शख्स है उसका बच्चा जो है वो बच गया। तो चूंकि इस पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो और उस नॉइज़ को कम करने के जो है वो लोगों के पास वसाइल नहीं है, तो लोग बहुत आसानी से और चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। लोगों को ज़हनी तौर पे तसल्ली चाहिए, ये दुनिया का उसूल है, ये नफ्सियात का उसूल है, लोगों को तसल्ली चाहिए। और लोग जो है वो बहुत जल्दी सोचने लगते हैं कि जादू कर दिया, किसी ने किसी को नज़र लग गई, तो वो बहुत सारी चीज़ों का सदभाव उसमें निकालने की कोशिश करते हैं। मैं उस चीज़ को सही नहीं समझता, लेकिन उसको मैं उसकी मजम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि लोगों के पास जो अपने हालात हैं उसमें वो एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आपका सवाल बचा है कि खुराक का ताल्लुक और खुराक का असर जो है वो न्यूट्रिशन पे होता है, लेकिन चूंकि और भी बहुत सारी चीज़ों को होता है, और हमें कहीं भी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली नहीं पता, और पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर शख्स, हर इंडिविजुअल, हर बच्चा जो है उसकी ज़रूरियात फ़र्क है, तो कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। तो इसमें, और चूंकि हर चीज़ को मजमूई तौर पर ठीक होना है, और मजमूई तौर पर चीज़ों को ठीक होना करना बहुत मुश्किल होता है, तो लिहाजा एक बहुत ज़्यादा गुंजाइश है लोगों की, आम लोगों की सोच में, कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। तो अगर आप एक सियासतदान हैं मिसाल के तौर पे, और आपको पता है कि साइंस ये कह रही है कि अगर आप पानी को ठीक कर दें, यहाँ पे पानी की सप्लाई को ठीक कर दें और बहुत सारी ठीक कर दें चीज़ें, तो हो सकता है बच्चों की सेहत अच्छी हो जाए, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये जो रिश्ता है इन चीज़ों के दरमियान में प्रिसाइस नहीं है, और आखिर में लोगों को ये जानने के, लोगों के पास भी ये जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि किस हद तक उनके बच्चों की सेहत में तब्दीली आई और किस हद तक उसमें आपका कोई कारनामा था। तो चूंकि इन तमाम चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें शोर बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें रह जाती हैं। हाँ
देखिए, आप दोनों में बहुत अग्रीमेंट है, तो मुझे कुछ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट तो बीच में डालना ही पड़ेगा
जी।
ये देखिए, क्या ये हाइपोथेसिस भी, ये भी देखें ना, हम एज एकेडेमिक्स अगर देखें तो एक और हाइपोथेसिस भी बनता है कि अगर हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट आ जाती, जो अभी तक नहीं आई और जो मेरा ख्याल अगले 50 साल भी नहीं आएगी, तो शायद ये जो इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज और जो लोगों की डिमांड्स हैं, वो शायद ज़्यादा ट्रांसलेट हो जाती हैं, क्योंकि अभी इस्लामाबाद बहुत दूर बैठा हुआ है, और इस्लामाबाद को चाहे उर्दू में बोले चाहे अंग्रेज़ी में बोले, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और कराची भी एक हद तक बहुत दूर बैठा हुआ है, लाहौर भी, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मैं देखता हूँ लाहौर की डिस्टेंस इवन गुजरांवाले से मेरा ख्याल कुछ एक चंद एक सालों का फ़र्क है। तो कुछ हद तक क्या आप डिसेंट्रलाइजेशन की बातें नहीं एक और पहलू से, एक और तरीके से कर रहे हैं?
जी, आपको डिसेंट्रलाइजेशन की बातें भी हम कर रहे हैं और सेंट्रलाइजेशन दोनों की कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो आपको करनी पड़ेंगी। और मैं बार बार जाऊंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सियासी अमल की और किस तरह से नीचे से जो है लोगों की डिमांड ऊपर तक जाती है, तो मेरा ख्याल है कि हमको इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जैसा भी है, टूटी फूटी जमहूरियत हो और मकामी जमहूरियत नहीं भी है, उसके बावजूद कुछ चीज़ें हैं जो कि जब नहीं मुहैया होती तो उसका असर होता है लोगों के सियासी करियर के ऊपर। तो और बिजली की जो है वो मिसाल है हमारे सामने, क्योंकि वो आसानी से समझ में आती है और उसके उसमें ये समझ में आता है कि किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी उसके अंदर, हालांकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन होता है। तो मेरा ख्याल है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके साथ कि मकामी हुकूमत जो है अगर वो हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फिर भी जो है वो पीछे से करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि मकामी हुकूमतें ना कर सकें, उनका मैंडेट भी ना हो सकता है उनके पास कभी भी उतना उस तरह के वसाइल ना हो, और हो सकता है कि जिस तरह का के सियासी अमल की बुनियाद पर इस तरह की जो तब्दीलियाँ हम चाहते हैं, हो सकता है कि वो आई ही उस वक्त के जबकि नेशनल एलीट जो है, और मुख्तलिफ नेशनल एलीट्स हैं, एक भी नहीं हमारे यहाँ, उन तमाम के दरमियान कोई ना कोई इत्तेफाक राय पैदा हो कि हाँ ये करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में मकामी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, मेरे ख्याल में इनके दरमियान तजाद नहीं है, मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को एक साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो कि बराह रास्त हुकूमत के अंदर नहीं हैं, वो लोग जो कि उसके बाहर हैं, वो सियासी अमल कर रहे हैं, एक्टिविज़म कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर हम एक बहुत आइडियल दुनिया में होते और हम कहते कि उनकी भी सुनी जा रही है, मेरे ख्याल में तब भी हमें जो महावरती और ज़बानी जो फासले हैं उन्हें कम करने के लिए कुछ करना पड़ता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर सियासी निज़ाम में जो है वो लोगों के मुतालबात की ट्रांसमिशन आसानी से हो रही होती तो यकीनन जिन बातों का हम इस वक्त तस्करा कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम अभी बहस कर रहे हैं, हो सकता है कि ये बहस हम और बहुत पहले कर चुके होते और हो सकता है कि इसके हम
पर हारे से इस पे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा कि देखिए एक हद तक तो जो मैं देखता हूँ कि काफ़ी हद तक हमारी सियासी डिस्कोर्स में ये चीज़ें आ चुकी हैं और हमारा सियासी डिस्कोर्स वो चीज़ें पिकअप कर रहे हैं मेरे नज़रिए में कम अज़ कम जो हमारा इंटेलेक्चुअल और ख़ास तौर पर डोनर तबका उभार रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इतना ज़्यादा फोकस टैक्स पे है जिसकी वजह से अभी डार साहब ने अभी कुछ 10-15 और टैक्स लगा दिए हैं और बड़े वो शोर मचा रहे हैं कि उनका जो गोल है टैक्स कलेक्शन उन्होंने माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया। तो ये तो बिल्कुल इन कीपिंग विद, अगर मैं अखबार में मेजर करूँ तो तकरीबन हर हफ्ते 4-5 आर्टिकल आते हैं टैक्स GDP रेशो पे। अगर मैं TV पे जाऊँ तो तकरीबन हर रोज़ बहुत सारे इश्यूज आते हैं टैक्स GDP रेशियो पे, बहुत सारे प्रोग्राम टैक्स GDP रेशियो पे होते हैं। इमरान खान की तकरीरें सुनूं बहुत ज़्यादा टैक्स, तो उन्होंने वो बात सुनी है। नंबर दो, अगर आप देखें तो पॉवर्टी पे तो हमारा बहुत देर से पॉवर्टी का, जनाब जब से MDGs बने हैं हमने मेजरमेंट का तरीका मेजर डिबेट होती रही, 15-20 साल से पॉवर्टी की मेजरमेंट पे डिबेट हो रही है। आपने भी कंट्रीब्यूट किया कि बढ़ी है या गिरी है या क्या हुआ है, बड़ी इमोशनल डिबेट हुई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो गया था शौकत अज़ीज़ एक ज़माने में, कुछ लोगों को कहा गया कि आप रिसर्च भी ना इस पे करें वगैरह वगैरह, करते करते हमने BISP बना लिया और BISP माशाल्लाह अब अच्छा समझा जाता है और अच्छा खासा काम कर रहा है। तो ये भी डिबेट में आ गई चीज़। नंबर दो जो अंजुम ने बात की थी क्लीन वाटर की, साफ़ पानी की, वो भी पॉलिसी में आ गई। अब काफ़ी सारे मतलब प्रोजेक्ट्स तो साफ़ पानी के बहुत सारे शुरू हैं, अब वो ठीक तरह इंप्लीमेंट नहीं हो रहे वो और बात है, पर एक डिस्कोर्स में बात आ गई है और हो रही है। नंबर चार बात अगर आप देखें तो लोगों ने बहुत शोर एनर्जी पे मचाया, प्रोसेशन हुई, डेमोन्स्ट्रेशन हुई, तो गवर्नमेंट ने सुन लिया। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि ये कहना कि सियासी वो मामलात में नहीं आती बात, ये तो सही नहीं है। और हमारे जो इंटेलेक्चुअल बात करते हैं जो TV पे होती है, जो मीडिया में होती है, वो तो बहुत सारी पिकअप हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
मैं यही समझ रहा हूँ कि वो मसाइल जिन पे बात आसानी से हो सकती है, और बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं और बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन एक जो रुकावट है वो मसाइल जिन पे आसानी से बात हो सकती है, जिनमें आप आसानी से लोग जो महसूस कर रहे हैं और जिस तरह से उसके बारे में एक सियासी मुतालबा उठता है, उसमें अगर फासला जब कम होता है तो उस चीज़ का हल भी निकाला जाना मुमकिन हो जाता है। वो जहाँ नहीं होता तो वहाँ पे वो बात रह जाती है और वो तकरीबन एक मेरा ख्याल है पैराडाइम या मेटाफोर का इशू, मुहावरे का इशू हो जाता है। अब अगर हम फूड सिक्योरिटी पे ही बात करें तो बहुत बहुत अच्छी आपने मिसाल ली नज़र इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो उसका पसमंजर में एक जो है बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा फेलियर है मुशर्रफ की हुकूमत का, जब उन्होंने जो है वो आलमी मंडियों में जो है वो खुराक की कीमतों को सही तरह से उसका तज्जिया नहीं कर पाए और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी उसको उस पर वो नज़रसानी नहीं कर सके तकरीबन अक्टूबर 2007 में। नतीजा उसका ये हुआ कि तकरीबन दिसंबर में पाकिस्तान में मंडियों में से गंदम जो है वो ख़त्म हो गया, फिर हुकूमत को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा, गंदम को उन्होंने जो है वो इम्पोर्ट किया और फिर बहरहाल जो भी हालात थे। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि एक चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है फूड सिक्योरिटी के हवाले से, एक चीज़ है वो ये है, और हमने जब बहुत गरीब लोगों से भी इंटरव्यूज किए और ब्यूरोक्रेट से भी किए, रेगुलेटर से किए, कहते हैं कि पाकिस्तान में इस चीज़ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि खुराक और आम जो जिस चीज़ को बुनियादी ज़रूरत समझा जाता है, यानी आटा, तेल, शक्कर, चाय, इन चीज़ों के दाम में जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं होगी और इसमें मुनाफाखोरी नहीं होगी और शॉर्टेज नहीं होगी, यानी कि मार्केट फंक्शन करेगी। तो शॉर्टेजेस नहीं हो सकती और प्राइस स्पाइरल्स नहीं हो सकते, यानी कि सॉल्यूशन नहीं हो सकती, होर्डिंग नहीं हो सकती, तो वो तमाम चीज़ें जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मार्केट फेलियर हो रहा है कोलूजन की वजह से, तो वो नहीं हो सकता। तो उसको रोकने के लिए जो करना है आपको करना होगा। जब ये मुशर्रफ के ज़माने में एक फेलियर हुआ क्योंकि उस वक्त उनकी हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी, चीज़ों पर नज़र नहीं रख पा रहे थे, फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हम जो है वो गंदम की कीमत के बारे में क्या करें, तो गंदम जो है वो गायब हो गई मार्केट से और देखा गया कि लोगों ने सोचा कि इस हुकूमत की लेजिटिमेसी ख़त्म हो गई है, इसका जो हक है लोगों पे हुकूमत करने का वो ख़त्म हो चुका है, तो उसका उसकी उनको एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ी। तो ये एक पहलू है फूड सिक्योरिटी का जिसके ऊपर मेरा अपना ख्याल ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, और चाहे पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत हो या جمہوری حکومت ہو چاہے لوکل گورنمنٹ چل رہی ہو نہ چل رہی ہو, سب کو پتہ ہے کہ اگر اس چیز کو آپ نے جو ہے وہ اس پہ لوگوں کو یقین نہیں دلایا اور اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کی آپ کو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور بہت ساری چیزوں پہ ہم یہ کیوں نہیں کر پاتے. تو اس میں یقیناً شاید یہ بات ہے کہ بھوک شاید ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے جو کہ ووٹ دیتے ہیں, شاید ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو کہ ووٹ بھی نہیں دیتے, جو اتنے دور ہیں, اتنے غریب ہیں. غربت خود جو ہے وہ ایک بہت ایک دلچسپ لفظ ہے. پاکستان میں جو ہے وہ غربت کو اب دیکھا جا رہا ہے غریبی کی لکیر کے حوالے سے, میرا خیال ہے, اور اس میں ہم بھی شامل رہے ہیں, ہم نے بھی کام کیا, بالکل آپ نے صحیح جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی. میرا اپنا خیال ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے وہ ٹیکنیکل کام کر دیا اور ہم نے ہم لوگوں نے اس میں اکیڈیمک کام کیا اور پالیسی میں بھی کیا اور تھوڑا بہت نام بھی کما لیا, لیکن میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے ڈس سروس, وہ کہ وہ ایک اچھی چیز نہیں تھی. اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں جب غربت کی بات ہوتی ہے تو فوراً جو ہے وہ پاورٹی لائن یا غریبی کی لکیر کی طرف چلے جاتے ہیں, اور وہ تمام جو سیاسی اور سماجی اور معاشی پروسیس ہے, یعنی وہ تمام جو مشینری ہے جس کی وجہ سے غریبی پیدا ہوتی ہے, اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے کہ لوگوں کے پاس ایسٹس نہیں ہیں یا زمین نہیں ہے یا لوگوں کو جو ہے وہ لیبر مارکیٹ میں ان کے ساتھ تفریق ہے, ڈسکرمنیشن ہے, یا اور بہت سارے جو مسئلے ہیں لوگوں کے جس وجہ سے لوگ غریب ہوتے ہیں اور غریب رہتے ہیں, تو ان سے توجہ ہٹ کے ہم صرف غریبی کی لکیر کی بات کرتے ہیں. تو وہ ایک میرا خیال میں ایک ایسی مثال ہے کہ جہاں پہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈونر بھی بات کر رہا ہے غریبی کی اور پاورٹی لائن کی, اور بیوروکریٹ بھی کر رہا ہے, ٹیکنوکریٹ بھی کر رہا ہے.
یو این ڈی پی کے ریپرزینٹیٹو نے ایک اخبار میں آرٹیکل لکھا, یا شاید آج, مطلب میں بھول رہا ہوں, پتہ نہیں کل یا آج, ایک اخبار میں بہت بڑا آرٹیکل ہے ڈان میں, ڈی ایم یو این ڈی پی کے ریپرزینٹیٹو کا, کہ جی پاورٹی پھر بڑھ گئی ہے پاکستان میں اور ہم غور نہیں کر رہے ہیں, صرف یہ ہے کہ ہم پاورٹی کو اب ایک اور طریقے سے میجر کریں گے. تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پاورٹی بڑھتی ہے گرتی کیسے, کیونکہ بڑھتی ہے گرتی تو کبھی بھی نہیں.
مطلب بڑھتی ہے گرتی ہے, مطلب کچھ اعداد و شمار کے مطابق
جب بھی عالمی ادارے ہوں یا ہمارے مفکر, وہ تو جب میجر کرتے پاورٹی بڑھی جاتی ہے, پھر وہ جب گر جاتی ہے ان کے پریویس میجر سے جب گر جاتی ہے تو پھر وہ ایک اور میجر بنا لیتے ہیں, نیا بڑھا دیتے ہیں. تو پھر پاورٹی,
وہ تو خیر
سمجھ کیسے ہمیں آئے کہ پاورٹی بڑھ رہی ہے یا چڑھ گئی.
مطلب ہم کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں پاورٹی میں, پہلی بات تو یہ ہے. کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک لکیر ہے جس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیوں بنتی ہے, کیسے بنتی ہے, اور ہم لوگ جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے, میں آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر بہت زیادہ سبجیکٹو ججمنٹس ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ وہ لکیر کہاں ہونی چاہیے, تو اس کے کیا معنی ہیں, لوگوں کی زندگی میں اس کے کیا معنی ہیں. کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی آمدن اتنی ہو اور اتنی باقاعدگی سے ہو کہ کبھی ان کو بھوک کا مسئلہ نہ ہو؟ کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کسی لحاظ سے جو ایک عام دھارا ہے, ایک مین سٹریم ہے, اس سے الگ نہ ہو, یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے ان کی جو ہے وہ شرکت ہو سیاسی عمل میں, جو ہے وہ سماجی عمل میں اور معاشی عمل میں, اور یہ کہ کم سے کم ان کے وسائل ان کے پاس اتنے ہوں کہ وہ باوقار طریقے سے ان تمام جو پروسیس ہیں, یہ تمام جو عمل ہیں, اس کا حصہ بن سکیں. غریبی کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ غریبی جو ہے وہ عربی کا جو لفظ ہے, عجیب و غریب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. غریب جو ہے وہ عربی میں اس کو کہتے ہیں جو کہ کوئی اور ہو, دوسرا ہو, غیر کو کہتے ہیں. غیر جو ہے اور غریب, ان کی جو ہے وہ جڑیں مشترکہ ہیں. تو آج کی سوشل سائنس میں جو لغوی معنی ہیں غریبی کے یا غربت کے یا غریب کے, وہ مارجنالٹی کے قریب ہیں, کہ وہ لوگ جو کہ مین سٹریم سے الگ ہیں کسی بھی وجہ سے, ہو سکتا ہے کہ جینڈر کی وجہ سے ہوں, کہ عورتیں جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ میں ان کو آدھی تنخواہ ملتی ہے اسی کام کے لیے, آدھی دہاڑی ملتی ہے اسی کام کے لیے جو کہ مردوں کو ملتی ہے, تو یہ غریبی ہے. یعنی کہ وہ ایک مین سٹریم ہے جو کہ مرد ہے, اور ایک عورت جو ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے. وہ لوگ جو کہ جن کی ذات نچلی ہے سو کالڈ, یعنی کہ وہ زمیندار ذاتوں سے نہیں ہیں, وہ جو ہے غریب ذاتوں, وہ ان ذاتوں سے ہیں جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ ان پہ تشدد کیا گیا, ان کو دبایا گیا, وہ اس لیے غریب ہیں کیونکہ لیبر مارکیٹ میں ان کے ساتھ بھی تفریق کی جاتی ہے, वो उनके उनका जो है वो सियासी अमल में कोई हिस्सा नहीं है, क्या वो लोग गरीब हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है या उनके पास दूसरी तरह के वसाइल नहीं हैं। तो गरीबी की जो इस्तलाह है उसकी बहुत दिलचस्प बात यह है कि उर्दू के जो लघवी मायने होंगे उसका ताल्लुक लकीर से भी नहीं है, उसका ताल्लुक आमदनी से भी नहीं है, उसका ताल्लुक जो है इस चीज़ से है कि आप जो एक जो दरमियान का जो धारा था उससे आप हटके कहीं और थे, किनारे पर थे, आप दरमियानी धारे में नहीं थे, आप कुछ और थे, यानी आप अजनबी थे। तो वो जो तसव्वुर है गरीबी का आज की सोशल साइंस में उसकी तायद की जा रही है, कहा जा रहा है कि मार्जिनैलिटी वही चीज़ है और हमें मार्जिनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। मार्जिनैलिटी जो है वो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से गरीबी बनती है। चाहे अगर आप अमेरिका देख लें तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ जो नस्लों के लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड हैं, लिहाजा उनकी लेबर मार्केट में चांसेस कम हैं, तालीम कम है उनमें, हर चीज़ होती है। लातिनी अमेरिका में आप कहते हैं कि जो इंडिजिनस लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड हैं, और चूंकि वो मार्जिनलाइज्ड हैं इसलिए उनके पास आमदन कम है। तो यानी कि गरीबी जो है उसका ताल्लुक आमदनी से नहीं लेकिन उसका ताल्लुक मार्जिनलिटी से है, फिर उसका असर आमदनी पर होता है। तो हमारे पास एक इतना मौसर लफ्ज़ था गरीबी जिसके लघवी मायने थे कि आप अजनबी हैं, आप जो एक आम धारा है माशरे का उससे अलग हैं। हमने खुद काम किया, मैंने खुद ज़ाती तौर पे काम किया कि हम उस तारीफ से हटके हम ले गए लोगों को लकीर की तरफ, और उस लकीर को समझाना लोगों की उसके मायने क्या हैं और उसकी सियासत क्या होगी ये तकरीबन नामुमकिन है कि वो लकीर क्या है। फिर लकीर को हम कहते गए कि भाई ये इक्विवेलेंट्स में होगी, इसमें ये होगा उसमें वो होगा। तो यानी कि वो इतनी चीज़ जो है वो उलझ जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप बात करना क्या चाह रहे थे, जहाँ से आपने बात शुरू की थी आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो उसमें जो है हमने एज सोशल साइंटिस्ट
मतलब भी कि हमारी ये सोशल साइंस जो मैं सोचता हूँ, सोशल साइंस एक कन्वर्सेशन है, एक किस्म का सोसाइटी के अंदर एक कन्वर्सेशन है जिसके अंदर मुफक्करों का एक काम है मेजर करना उसको, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको बनाना बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, और बाकियों का काम है समझना और उसके ऊपर अपनी डिमांड्स को एजिटेट करना, और पॉलिसी मेकर्स का काम है कि वो किसी तरीके से उन पॉलिसीज़ को बनाएं और उन चीज़ों को समझाएं। तो जो आप बात कह रहे हैं जिसको मैं समझ रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि आप एक और तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में कॉन्वर्सेशन है ही नहीं, क्या ये बात सही है?
कॉन्वर्सेशंस हैं अपने अपने हलकों में, यानी कि एक साथ
फ्रैगमेंटेड
जी, एक साथ फारसी में शायरी कर रहे हैं, एक अरबी में कर रहे हैं, एक साथ उर्दू में कर रहे हैं, एक साथ सिंधी में कर रहे हैं, और एक साथ जो है वो किसी आम मुहावरे में कर रहे हैं। तो कोई ऐसा ग्रैंड मुशायरा नहीं जहाँ के आके सब एक दूसरे से बात कर सके।
क्या इसका कॉन्वर्सेशन इसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटीज़ कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं? अगर मैं देखूँ जैसे आपने बरतानिया की बात की तो वहाँ है सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च और आपके वेरियस इदारे हैं जो एक दूसरे से बातें करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन सब एक दूसरे से नेटवर्क्ड हैं। मैं अमेरिका में देख रहा हूँ सब यूनिवर्सिटीज़ नेटवर्क्ड हैं, NBER है, यहाँ रोज़ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं नहीं। तो क्या इसका इसकी वजह ये है?
उसकी उसकी मेरे ख्याल में शायद कुछ वजह ये है। मैं इस वक्त जिस पर मैं बात कर रहा था वो ये है कि उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी सियासत है, बहुत सारा पावर है, यानी ताकत की जो है वो नाहमवारी है, और जो ताकतवर होते हैं वो अपने मराहत का दिफा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ पे इस वक्त बात कर रहा था वो ये था कि बतौर सोशल साइंटिस्ट हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि हम भी मुसलसल इस जो ज़बानी और महावरती जो फासला है उसको बढ़ाने के बजाय उसको हमें घटाना चाहिए, हमें मुसलसल इस जद्दोजहद में रहना चाहिए और मुसलसल हमें इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए, अपने दोस्तों को समझाना चाहिए कि हमारे काम का दरअसल हिस्सा है कि जो अलग अलग जो हो महावरती और ज़बानों में जो गुफ्तगुएँ चल रही हैं इनको जोड़ना भी हमारा काम है। हम सिर्फ अपने अपने जो अपने हलकों में वो काम करके खुश नहीं हो सकते या मुतमईन नहीं हो सकते कि ये काम हमने कर लिया। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। ज़ाहिर है कि चेंज जो है तब्दीली जो है वो सिर्फ ख्यालात से नहीं आती और सिर्फ चंद
सॉरी हाँ बोलें
जी बोलिए
हाँ मैं कह रहा था कि इसकी अहमियत समझने की बहुत ज़रूरत है कि मुश्तरका ज़बान जो है वो होनी क्यों ज़रूरी है। जैसे तुमने ये शुरू में कहा कि कई चीज़ें हैं जिन पे तो 20 साल से गुफ्तगू हो रही है, और तुमने MDG की मिसाल दी। अब MDG को तुम अगर ले लो तो उस टर्म की जो है कोई जो है उसका कोई तर्जुमा मौजूद नहीं है जो कि किसी आम शख्स को समझ में आए, इसलिए वो उसमें अवाम की शिरकत है ही नहीं उस कॉन्वर्सेशन में, उसमें वो इंक्लूसिव डिबेट और डिस्कशन है ही नहीं। अगर तुम उसका बहुत जाके खोज निकालोगे तो उसका एक दफ़ा मैं इस पर लिख भी चुका हूँ कि वो कोई तुम्हें मिल जाएगा कि 1000 साल तरक्कियाती अहदाफ, अब ये किसकी समझ में चीज़ आ सकती है। तो ये सिर्फ जो है पॉलिसी लेवल पे डिबेट चाहे 20 साल से हो रही हो, अगर उसमें कोई शख्स शामिल नहीं है तो उसका कोई ख़ास जो है नतीजा नहीं निकलेगा, जैसे कि हमने देख लिया कि 20 साल की डिबेट के बाद ना वो पॉलिटिकल डिमांड्स बन सके, ना उन पे कोई अमल हो सका, और जो एक तरह से वो हम जैसे हारिस कह रहे हैं कि एक मखसूस दायरे में बस वो बात होती रही। तो इस चीज़ की मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि सबसे पहला जो हमारा फ़र्ज़ है वो ये है कि हम इस अहमियत को समझें कि एक मुश्तरका ज़बान होना क्यों ज़रूरी है, और फिर जैसे तुमने कहा कि यूनिवर्सिटियाँ और थिंक टैंक्स हैं, जब वो उस ज़बान में गुफ्तगू करेंगे तभी उसमें जो है एक शिरकत बढ़ सकेगी और हम उसमें आगे कुछ बढ़ सकेंगे।
अच्छा, मतलब मैं अगर मिसाल दूं आपको बरतानिया की, जहां पर सबसे पहले पॉवर्टी लाइन पर काम हुआ, तो एक साहब थे राउंड ट्री थे, गालिबन उनका नाम राउंड ट्री था, वो एक मिठाई की दुकान थी, चॉकलेट की फैक्ट्री थी, उसके मालिक थे और उनके पास बहुत पैसा आ गया। उसके बाद उनकी फैमिली में कुछ लोग थे जो कि जिनकी सोच जो थी वो उनको हमदर्दी थी लोगों के साथ, लोगों के हालात के साथ। उससे पहले जो है वो 19वीं सदी में एंगल्स ने काम किया था वर्किंग क्लास के ऊपर, कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास, कि उसमें इस तरह के अल्फाज थे कि डेस्टिट्यूशन है, रेचेडनेस है, भूख है, बीमारी है और बहुत बुरे हालात हैं, लोग मर रहे हैं वहाँ। और उसी चीज़ को जो है वो अदब में डिकिंस ने उस पर काम किया कि जो रेचेडनेस है, रेचेडनेस बिल्कुल इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, अब जो है वो उन तमाम जो तहरीकात थी, वो जो तमाम काम था डिकिंस का और एंगल्स का, उसके तकरीबन 40 साल या 50 साल के बाद एक साहब आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ यकीनन वही हालात हैं और अब हम इस पर हम काम करेंगे। तो उन्होंने जो है वो एक सोशल साइंस में पॉवर्टी की इस्तलाह को ले आए और उन्होंने ये किया कि उन्होंने पहली दफ़ा एक सर्वे किया दुनिया में और एक सैंपल सर्वे किया उस शहर में जहाँ पे उनकी फैक्ट्री मौजूद थी, कि लोगों को जो कि मतलब एंगल्स ने अलग तरह से काम किया था, उन्होंने एक सर्वे किया वहाँ पे, एक सैंपल सर्वे किया हाउस होल्ड्स का और वहाँ पे उनकी उनकी आमदनी देखी और देखा कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उस शहर में उनको हासिल करने के लिए कितना खर्चा करना ज़रूरी होता है, आपकी आमदन कितनी होनी चाहिए। तो पॉवर्टी लाइन का तस्वर वहाँ से आया, राउंड ट्री साहब के काम से, और बहुत अहम काम था मेरे ख्याल में, बहुत फाउंडेशनल काम था, लेकिन वो उस माशरे में उस वक्त के जो हालात थे उसके हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त था। क्यों? उस शहर में कोई भी शख्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं था, जो कोई भी आम आदमी, पूरा माशरा बटा हुआ था सरमायादारों में एक तरफ जो कि बहुत कम लोग थे माफ कीजिएगा, और एक तरफ मजदूरों में जो कि बहुत ज़्यादा लोग थे, और हर मजदूर जो था वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो तनख्वाह या दिहाड़ी की बुनियाद पर रहता था, उसकी कोई और उसका जो है वो ज़रिया माश नहीं था। तो एक ऐसा माशरा बन गया था जो कि बिल्कुल उसके अंदर एक मुकम्मल स्पेशलाइजेशन थी लेबर मार्केट के अंदर, कि कुछ लोग जो हैं वो उनका ज़रिया माश जो है वो कैपिटल उसकी मिल्कियत थी, और कुछ लोग जो थे उनका ज़रिया माश सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो अपनी मेहनत फरोश करना था, मेहनत कश थे वो। तो उसमें जो है और उनकी इस आमदनी का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था कि उनको नकद में आमदन मिलती थी। तो उस माहौल में जब राउंड्री ने वो काम किया तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो सही तरीके से समझ सकते थे उस काम को, ये देख सकते थे कि पॉवर्टी लाइन के जरिए हम बता सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं, कि अगर वो अपनी तमाम जो आमदन है वो उसको अपनी बुनियादी ज़रूरियात हासिल करने पर भी लगा दें तब भी वो नाकाफ़ी होगा। तो वो काम, उसका काम, उस काम का पावर था, उसका काम का जो है वो वो फिक्री पावर था यानी इंटेलेक्चुअल पावर।
हारिस, मैं आपकी मिसालों से जो मैं बात समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि काम में ओरिजिनलिटी थी, काम में सोच थी, काम में समझ थी, तो वो काम का इम्पैक्ट हुआ, उसका लैंग्वेज से ताल्लुक़ नहीं। अगर हमारे यहाँ रिसर्चर्स अच्छा काम करें और समझाएं लोगों को तो मेरा ख्याल है लोग समझ जाएंगे, लोग इतने बेवकूफ़। एक और भी चीज़ है कि जो जो हम बात करते हैं रैशनैलिटी ऑफ पीपल, ये भी तो नहीं कि टोटली लोग अपने बारे में जानते ही नहीं, समझ ही नहीं आती उनको, वो समझा ही नहीं सकते अपने हुक्मरानों को कि क्या होना है। आई थिंक इसमें भी तो थोड़ा बहुत आपको गौर करना चाहिए कि नहीं।
समझा सकते हैं, लेकिन ये कि जिस हम बात कर रहे हैं सोशल साइंटिस्ट की इस वक्त, आम लोग तो फिर अपने अपने तरीक़ों से समझाते हैं और वो तरीके जो है वो पाकिस्तान में जो है वो कहीं कहीं जो है वो तशद्दुद के ज़बान इख्तियार कर लिए हैं उन तरीक़ों ने, कहीं पे जो है वो जराइम है, कहीं पे डिप्रेशन है, तो वो तो बहुत सारा मुख्तलिफ तरीक़ों से चीज़ें हो रही हैं ना आपके यहाँ। लेकिन हम अगर हम महदूद कर दें इस वक्त गुफ्तगू को कि उसमें सोशल साइंटिस्ट का क्या रोल है, और मैं दोबारा बार ये कहूँगा कि जो डिसाइसिव रोल नहीं है सोशल साइंटिस्ट का, सोशल साइंटिस्ट का जो भी रोल होगा वो और चीज़ों के जो है वो तनाजरे में ही आएगा, और जब चीज़ें हो रहेंगी तब सोशल साइंटिस्ट का कोई रोल होगा। लेकिन हम चूँकि सोशल साइंटिस्ट हैं, हम सोशल साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सोशल साइंस का क्या रोल होगा उसके अंदर, उस तब्दीली में या उस तरह के सियासी अमल के अंदर। तो वो जो मैं मिसाल दे रहा था उसका मकसद ये था बताना कि उस रिसर्च की या उस वो जो तस्वुरात बनाए उन्होंने, उनका उनकी ताकत ये थी कि उस वक्त उस माशरे के जो हालात थे उससे वो जुड़े हुए थे, उसी में से निकल रहे थे, वो किसी और लेबॉरेटरी से बन के नहीं आए थे। हम जब उन तस्वुरात को बग़ैर सोचे समझे जो है वो उनका अतलाक करने लगते हैं अपने हालात के ऊपर, जो कि बहुत फ़र्क होते हैं उनसे, तो फिर हम यकीनन ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम उस जगह आ जाते हैं कि हम वो ज़बानें ईजाद कर रहे होते हैं जो कि हम सिर्फ़ एक दूसरे से ही बात कर रहे होते हैं, फिर उसका ताल्लुक जो है उस गुफ्तगू का ताल्लुक उन लोगों से नहीं होता जो कि उन हालात में रहते हैं। तो मेरा मतलब बुनियादी मुद्दा यह है कि सोशल साइंटिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ जो है उन तस्वुरात को लेके उन पर सिर्फ काम ना करे जो कि कहीं और से बन के आए या यहाँ ही बने हों लेकिन किसी और कुछ और जो है वो मकासद के लिए बने हों, लेकिन वो मुसलसल जो है वो अपने तस्वुरात को जो है वो आम लोगों, जिन लोगों के वो काम कर रहा है, जिन लोगों की कंडीशन पे वो काम कर रहा है, अगर वो तालीम पे काम कर रहा है तो यकीनन उन लोगों पे काम कर रहा है जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर जो है वो गरीबी पे काम कर रहा है तो यकीनन उन लोगों पे काम कर रहा है जो कि गरीब हैं, तो उन लोगों के तजुर्बात, उनके एहसासात, उनके मुहावरात और उनकी ज़बान से जब तक वो नहीं जोड़ेगा और उनके सियासी मुल्क जब तक नहीं जोड़ेगा ये जोड़ेगी, तो मेरा ख्याल है कि वो आपस में ही बात करते रहेंगे, उनका आपस की गुफ्तगू चलती रहेगी, और वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल पॉलिसी में नहीं हो रहा हमारे यहाँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी माशरे में जो है वो बहुत सारे मसाइल इसलिए पैदा हो रहे हैं, इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि यहाँ पे सबको आज़ादी है कि वो अपनी अपनी डेढ़ ईंट की बना के बैठे रहें। अगर आप बात करते हैं तालीम के निज़ाम की, तो अभी आपको आज़ादी है कि आप ए लेवल्स कर लीजिए, ओ लेवल्स कर लीजिए, आपको आज़ादी है कि आप मदरसे में चले जाएं, एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा तंग ना करें, तो दोनों चीज़ें चल सकती हैं। और ये कि सबको एक तरह की तालीम हासिल करनी चाहिए उस तरफ ना जाइए, क्योंकि आपको हमने आज़ादी दे दी है कि आपको जो करना है आप करें, आप अपने हलकों में ए लेवल्स कीजिए, अपने बच्चों को तैयार करें ग्लोबल लेबर मार्केट के लिए, या आप अपने बच्चों को तैयार करें मदरसों के लिए, हम आपको नहीं छेड़ते। तो ये चीज़ जो है आपके पूरे माशरे में जो है वो हर मौजू में, हर महकमे में, हर जगह पर ये फैली हुई है, हर शोबे में यही है। तो हमारे शोबे में भी यही है कि आप जो है वो एक टेक्निकल गुफ्तगू कर लीजिए और कोई मसला नहीं होगा, आप कॉन्फ्रेंसेस में भी चले जाएं, आप मुकामी कॉन्फ्रेंसेस भी कर लें, आप बाहर भी चले जाएं, आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी कामयाब हो जाएं, आप एज ए कंसल्टेंट जो है वो आलमी इदारों के साथ भी काम कर लें, लेकिन ये कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, कि इस चीज़ का ऑन द ग्राउंड कोई असर भी होता है कि नहीं, आम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, और शायद मुमकिन है कि हम जो टेक्निकल लोग हैं, हम जो सोशल साइंटिस्ट हैं, खुदा ना खास्ता हम लोग ही बेवकूफ़ हों, हम ही ना बात को ना समझ रहे हों, तो ये ना हो, इस तरफ ना जाइए, अपने आप को, अपने काम को जो है वो तनकीदी निगाह से ना देखें, बस उसी में ही महदूद रहें और उसी में मुतमइन रहें कि जो आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
पर देखिए, ये तो मेरा ख्याल पूरी दुनिया में यही निज़ाम है, और सोशल साइंटिस्ट तो मेरा ख्याल हर जगह एक दूसरे को ही एड्रेस करते हैं और क्वेश्चंस रेज करते हैं, और एक सोशल साइंटिस्ट की अपनी डिबेट होती है जो कि फिर आम मीडिया रिपोर्टर्स या कुछ वो जो लोग जो ट्रांसलेट कर देते हैं इनटू ऑर्डिनरी ज़बान। तो मेरा ख्याल है जो मैं दुनिया में निज़ाम देखता हूँ कम अज़ कम यही है। क्यों अंजुम, आप बताइए आपका ख्याल है। मेरा तो ख्याल है कि इसका सोशल साइंटिस्ट एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से एक किस्म की कन्वर्सेशन डायलॉग बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, टेस्ट करेंगे। वो हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में काम बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, और उसकी वजह से कुछ हमें ये तासुरात आते हैं हमारे दिमाग में, शायद कुछ और भी हो सकता है, बट नहीं क्या। संजू आप बताइए क्या ख्याल है आपका।
नदीम, ये तो सही है कि सोशल साइंटिस्ट आपस में बात करते हैं, मगर जो बाकी दुनिया की तुम बात कर रहे हो, वो सोशल साइंटिस्ट काम जो है वो फील्ड वर्क से शुरू करते हैं, कॉन्वर्सेशंस से जो उनकी सैम्पल पॉपुलेशन होती है, जिस पे भी अगर वो सोशियोलॉजी कर रहे हैं, वो अर्बन वायलेंस पे काम कर रहे हैं, वो रेस पे काम कर रहे हैं, तो वो उन इलाकों में जाके काम करते हैं, और फिर वहाँ से जो चीज़ उनको समझ में आती है, फिर वो दूसरे सोशल साइंटिस्ट के साथ उस पर तबादला ख्याल करते हैं। तो मेरी समझ में तो यही बात आती है कि मोटी मोटी के ये प्रोसेस जो है, ये बॉटम अप प्रोसेस है या टॉप डाउन प्रोसेस है। और मेरे जहन में यह एक बात आ रही थी कि जैसे हमारे बाएं बाजू की सियासत थी जो कि ख़त्म हो गई, वो शुरू में ऐसा ही था कि वो जाके दही इलाकों में ढूंढते थे कि कुलाक कौन है यहाँ पे और पेटी बुर्जुआजी कौन है। तो बिल्कुल वही मिसाल साथ आती है कि आप थेरी आपके पास पहले आ गई और उसको, उस थेरी की गिर्द जो है आप अपनी सोशल रियलिटी को ढालना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप नीचे से शुरू करें कि भाई यहाँ इस इलाके में कौन क्या कर रहा है, उसका किसी दूसरे से क्या ताल्लुक है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की बहुत कमी है, और बार बार यही चीज़ सामने आती है कि वो जो सोशल साइंस का प्रोसेस है वो तकरीबन 180 डिग्रीज उलट हुआ हुआ है। और इससे मैं हारिस के साथ इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे कि ये बहुत बहुत बड़ी कमजोरी है।
बट इसमें जो मुझे इस बात समझ नहीं आ रही आप दोनों की, वो ये कि मैं आपकी सब बात मान जाता हूँ कि हमें लोकल इश्यूज पे काम करना है, हमें अपनी सोच तैयार करनी है, हमें अपनी हाइपोथेसिस तैयार करनी है, हमें अपना फील्ड वर्क करना है, हमें अपने माशरे को समझना है। ये एक सोशल साइंटिस्ट पे ये बातें फ़र्ज़ हैं और ये होने चाहिए। उसके बाद सोशल साइंटिस्ट को अगर उसको कुछ भी सीखना है, चाहे उसको जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाके विलेजेस में रहते हैं, इकोनॉमिस्ट सर्वेज करते हैं, यू नो सोशियोलॉजिस्ट जाके लोगों से फोकस ग्रुप्स और बातें करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, अपना करें, ज़रूर करें और करना भी चाहिए। बट उसके साथ उनको एक अच्छी रिसर्च, अच्छा रिसर्च एजेंडा तैयार करना चाहिए और आपस में कन्वर्सेशन तैयार करनी चाहिए। मुझे वो बिल्कुल मिसिंग नज़र आता है, और मुझे उसका ताल्लुक नहीं नज़र आता कि वो ज़बान कौन सी बोल रहे हैं या क्या। अगर वो नहीं अपने आप को ट्रांसलेट कर सकते, इसका मतलब है कि वो अच्छे सोशल साइंटिस्ट ही नहीं है, तो उनका हम क्या करें, ठीक है ना। इसका ज़बान से ताल्लुक तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये तो एक नाकामी है हमारे सोशल साइंटिस्ट की, बेसिकली। एम आई रॉन्ग?
नदीम, दोनों चीज़ों की कमी है, जो जिस चीज़ की तरफ तुम इशारा कर रहे हो वो भी, उसका फ़क्दान भी है, और जो हारिस कह रहे हैं तो ज़बान का की बात है वो भी है। तो दोनों चीज़ें जो हैं उनकी कमी को पूरा करना है। मेरे जहन में ये आ रहा था जब हारिस राउंड ट्री की बात कर रहे थे कि किस तरह से रिसर्च करनी चाहिए ताकि वो लोगों को समझ में आए और लोग उसमें शामिल हो सकें कि अभी हिंदुस्तान में भी कुछ, मेरा ख्याल है एक साल पहले या 6-7 महीने पहले दो लोग थे जिन्होंने ये कहा कि प्लानिंग कमीशन ने ये नई कोई अनाउंसमेंट ये है कि लिविंग वेज जो है अर्बन लिविंग वेज इतनी होगी हर महीने, तो उन्होंने कहा अच्छा अब हम इस लिविंग वेज में गुजारा करके देखते हैं कि हम हमारा क्या हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी उसका काफ़ी असर हुआ कि वो 3-4 महीने उस वेज पे रहे और फिर उसके बाद जो था उनका सेहत पे क्या असर हुआ, उनके वज़न पे क्या असर हुआ। तो इस तरह का काम जो है और वो चीज़ जो है वो लोगों की समझ में भी आती है। खाली जो जैसे
वो तो जो आपने बात की मेथोडोलॉजी की बात की, मैं आपसे उससे एग्री कर रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारा जो सोशल साइंटिस्ट है पाकिस्तानी, जो आप और मैं कई दफ़ा बात कर चुके हैं और हम लिख भी चुके हैं कि वो सिर्फ डोनर के पीछे भाग रहा है, वो अपने इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट थीसिस नहीं बना रहा। और नंबर दो, वो आपस में कोई डिबेट कोई उसका वो है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं सोचता रहता हूँ, हमारे पाकिस्तानियों के नाम पे कोई थीसिस ही नहीं है। महबूबुल्ला हक का थीसिस था, उसके बाद आज तक कोई थीसिस ही नहीं आया। वो इसलिए बिकॉज हमारे इंटेलेक्चुअल्स ना साइटेशन में बिलीव करते ना कुछ, उसका अगेन लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक ज़रूरी चीज़ है एक एकेडमिक डिस्कोर्स में, और हमारा एकेडमिक डिस्कोर्स नहीं है। मेरा ख्याल आप जो निशानदेही करें जिस चीज़ की, वो ये है कि हमारा एकेडमिक डिस्कोर्स बिल्कुल कमज़ोर है, हमारी मेथोडोलॉजी बहुत कमज़ोर है, हमारे सोशल साइंटिस्ट कमिटेड नहीं है। ये बताइए क्या ख्याल है, ये सही है या इट्स अनदर इशू?
नदीम देखो, अगर डिस्कोर्स हो भी जाए मगर एक डिस्कोर्स एक ऐसी फ्रेम में या ऐसी जबान में हो जिसमें कोई शामिल ना हो सके, तो वो तो फिर वही बात मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वाली आ गई ना, कि उस पर तो 20 साल से डिस्कोर्स हो रही है और लोग नाप भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं और उसका कोई असर नहीं है, इसलिए कि उसमें कोई शामिल ही नहीं है। उसकी
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो है ना एग्जांपल, वो नहीं मैं आपसे एग्री करूँगा। आई टेल यू रीज़न व्हाई। जब मैं प्लानिंग कमीशन में था तो मुझे पता है, मैंने सब वो देखे उसके पेपर्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एक यूएन ने हमें दिया था, जैसे अभी एसडीजीज दिए। एसडीजीज के लिए नवाज शरीफ चला गया न्यूयॉर्क, कुछ साइन कराया, ना नवाज ने पढ़ा ना किसी और ने पढ़ा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पाकिस्तान में किसी ने नहीं पढ़े थे। प्लानिंग कमीशन में एक सेल बना दिया गया पर प्लानिंग कमीशन ने भी नहीं पढ़े थे। उसकी जो मीटिंग्स हुई थी जब अडॉप्ट करने के, उसमें कोई सरकारी अफसर गया ही नहीं, उसमें सिर्फ ये डोनर्स और उनके मुलाजिम थे जिन्होंने मीटिंग की। उनके मिनट्स पे प्राइम मिनिस्टर ने बस साइन कर दिया। हमारा ड्यू प्रोसेस कोई नहीं था, हमारे पास कोई ओनरशिप नहीं थी, ना हम कभी समझे। तो देखिए ना, अब उसमें लैंग्वेज का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारे पास ड्यू प्रोसेस नहीं, अगर हम समझ नहीं रहे तो हम क्या करें? पर चलें, ये ठीक है, इसको इधर ही छोड़ते हैं। मेरा ख्याल है हारिस, समराइज कर लें अब, व्हाट इज़ द मेन पॉइंट दैट यूड लाइक टू मेक, ताकि हम बच्चों को बता सकें। हाउ शुड ये भी बताइए कि हाउ शुड रिसर्चर्स चेंज देयर अप्रोच इन लाइट ऑफ व्हाट यू से।
रिसर्चर्स जो है, सोशल साइंस रिसर्चर्स जो हैं, उनको हमेशा इस जिम्मेदारी से काम करना चाहिए कि जिस मौजू पे वो काम कर रहे हैं और जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो किस जबान और मुहावरे में जीते हैं और अपनी अपनी हकीकतों को समझने की कोशिश करते हैं। और मज़ीद, सोशल साइंटिस्ट को इस चीज़ को बतौर एक ज़िम्मेदारी कबूल कर लेना चाहिए कि इन मुख्तलिफ ज़बानों और मुहावरों का, यानी कि आम लोगों की ज़बान और मुहावरे, गरीब लोगों की, अनपढ़ लोगों की, और फिर सियासतदान की, पॉलिसी मेकर की, डोनर की, ग्लोबल एक्सपर्ट की, ये तमाम मुहावरे और ज़बानें रहेंगी अपनी जगह, ये ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मेरा जो इस गुफ्तगु में जो बुनियादी जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सोशल साइंटिस्ट को ये अपना किरदार कबूल कर लेना चाहिए कि अपना साइंटिफिक काम के साथ साथ, बल्कि उसके साइंटिफिक काम का ये भी हिस्सा है कि वो मुसलसल एक मुतरजम भी होगा या होगी। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर सोशल साइंस भी बेहतर होगी, डेमोक्रेसी भी ज़्यादा मजबूत होगी। सोशल साइंस की पहुंच असल जो ऑन द ग्राउंड चेंजेस हैं उस पर भी ज़्यादा हो।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस। हारिस, आखिर में एक बात बताइए, एक और चीज़ मैं शुरू करना चाह रहा हूँ बच्चों के लिए। ये बताइए कि आप कोई एक किताब रेकमेंड करेंगे लोगों को पढ़ने के लिए, और वो कौन सी किताब होगी और क्यों?
मैं जो है रेकमेंड करूँगा, ज़रा मुश्किल किताब है, लेकिन मैंने उस किताब से बहुत ज़्यादा सीखा। तो एक मुश्किल किताब रेकमेंड करता हूँ, वो है अमर्त्या सेन की, मेरे ख्याल में जो आखिरी जो बहुत अहम किताब है उनकी, जो कि इकोनॉमिक्स और एथिक्स के दरमियान है, इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड। तो मुझ पर उस किताब का बहुत ज़्यादा असर हुआ, मैं वो रेकमेंड करूँगा अगर पढ़ सकें। मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो थियोरेटिकल तसव्वुरात हैं वो एथिक्स और फिलोसफी से आए हैं, और फिर इकोनॉमिक थियोरी उसमें इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा वो, क्योंकि वो किताब जो है, मेरा ख़्याल है कि कोई भी हम काम करते हैं सोशल साइंटिस्ट, तो हमें इस चीज़ के बारे में हमें शऊर होना चाहिए कि उसकी एथिकल फाउंडेशंस क्या हैं, यानी उसकी अखलाकियात क्या हैं। और मेरे ख्याल में इस पर हम बहुत कम तवज्जो देते हैं। यकीनन हमें टेक्निकल जो है वो एक्सेलेंस उसकी तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन उसकी एथिकल फाउंडेशंस क्या हैं। तो मेरे नज़दीक वो किताब जो है वो एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है कि आज के दौर में जो सोशल साइंस है या इकोनॉमिक्स है, तो उसमें मुख्तलिफ जो सोच के तरीके हैं उनकी एथिकल फाउंडेशंस क्या हैं, कि मुख्तलिफ जो सोच के तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं मार्केट्स के बारे में सोचने के, स्टेट के बारे में सोचने के, पब्लिक एक्शन के बारे में सोचने के, और मुख्तलिफ जाविये हैं इनइक्वालिटी के बारे में सोचने के। तो उनकी जो फलसफियाना बुनियादें क्या हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उस किताब की बड़ी अहमियत है मेरे जहन में। तो मैं कहूँगा कि वो किताब पढ़ें और उससे जो है वो सीखने की कोशिश करें।
ठीक है हारिस, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। अंजू, मेनी लास्ट वर्ड्स?
नहीं नदीम, बहुत अच्छी गुफ्तगु हुई, और इस पर मज़ीद और बात करने का की बहुत ज़रूरत है, और इसको इसमें आगे बढ़ाना है कि हारिस ने जो इस ज़बान पे वो किया है उसकी अहमियत बताई है, तो इन्होंने खुद जो काम किया है उसको न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और पावर्टी पे, उसमें किस तरह से इस्तेमाल किया है और उससे क्या सीखा है और उससे हमें क्या क्या मालूमात फराहम हुई हैं जो कि पहले हमें मालूम नहीं थी।
इंशाल्लाह हारिस, अगर आप इजाज़त दें तो आपसे हम दो तीन और प्रोग्राम करेंगे, ना सिर्फ ये इस चीज़ पे, बल्कि आपका काम मुझे याद है लैंड सिस्टम पे बड़ा अच्छा था, उस पे बात करनी है। पॉवर्टी पे जो आपने बात कही, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पॉवर्टी पे भी यही रहा प्लानिंग कमीशन में, कि जब मैंने ये आप वाली बात कही कि पॉवर्टी मेजर करने का क्या फ़ायदा है, तो बड़ी मुझे मार पड़ी थी। तो खैर, इन चीज़ों पर बात करेंगे आइंदा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ।